ஓம் சாந்தி. மதுபன் கி இஸ் பாவன் பூமி மே ஆப் சப்கோ தபஸ்யா கர்னே கா சான்ஸ் மிலா ஹை. ஜிஸ் ஸ்தான் பர் பாபா கி யாதே சமாயி ஹுயி ஹை. कहते हैं कण कण से तेरी याद आती है. चार धाम की यात्रा भी आप सब कर रहे हैं और जिधर जाओगे साकार में बाबा ने इसी स्थान पर रह करके अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाया. ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि, बहुत सी विशेषताएं इस भूमि की हैं. यहाँ पर योग लगाने की मेहनत नहीं लगती, अपने आप योग लग जाता है, ऐसा है ना? तो आप सब बाबा के घर में अपने आप को हर बात में संपन्न बनाने के लिए पहुँचे हैं. जब पास में तानर की बात आती है, हम सब की पढ़ाई का पेपर कितने दिन के बाद होता है, कब होता है? स्थूल में अगर स्कूल में कोई पढ़ते हैं तो उनका त्रैमासिक, छमासिक, नौमासिक अलग अलग पेपर होते हैं. कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ थ्योरी के होते हैं. और हमारी पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ पेपर, सवेरे पढ़ो और दिन में पेपर दो, रोज ही पेपर. उस पेपर में पास होना और सिर्फ पास नहीं होना, पास भी दानर हो जाना, रिस्पेक्ट से पास होना, बहुत अटेंशन देने की बात है. हमारी दादी प्रकाशमणि जी एक बात कहती थी कि मैं तो सदा यही समझती हूँ कि मैं पेपर हाल में बैठी हूँ. जिधर जाओ उधर कोई न कोई बात आती है, पेपर ही होते हैं. अभी अभी पढ़ के आते हैं और अभी अभी पेपर शुरू हो जाता है, ऐसा है ना? सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात आए उसमें डिस्टर्ब नहीं होना, मूड खराब नहीं करना, गुस्से में नहीं आना, अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र स्वच्छ बना करके रखना, अनासक्त रहना, नष्टो मोहा रहना, बहुत सारी बातें बाबा की मुरली में हम सुनते हैं. और वहाँ से बाहर जब कार्य व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, सेवाओं में आते हैं, तो सब पेपर सामने आने लगे. कहते आज ही बाबा ने कहा, आज ही हमने संकल्प लिया, आज ही पेपर आ गया. तो पास होते हो या फेल हो जाते हो? पास हो जाते हो. अभी तो पास भी दानर की बात है, सिर्फ पास नहीं होना है. कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत अटेंशन देते हैं, सवेरे से रात तक सभी नियमों में, मर्यादाओं में बहुत ध्यान रखते हैं, कोई अवज्ञा न हो, उल्लंघन न हो. एक मास, दो मास, तीन मास भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन चलते चलते अगर अचानक कोई पेपर आ जाता है तो वहीं पर फेल हो जाते हैं. मम्मा की एक बात सुनाता हूँ. मम्मा कहती थी कि बाबा के बच्चे 6 मास तक इतना अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, रोज अमृत वेले करते हैं, मुरली पर ध्यान देते हैं, संघ की परहेज करते हैं, भोजन की करते हैं, लेकिन अगर एक दिन चलते चलते 6 मास के बाद कोई बात अच्छी नहीं लगी, कोई उनके अनुसार कोई बात नहीं हुई, जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, तो 6 मास की हुई कमाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है. पानी फिर जाता। और बाबा भी साकार मुरलियों में कभी कभी कहते हैं कि अगर चलते चलते कोई अच्छे पुरुषार्थी 8 साल 10 साल 20 साल से बहुत अच्छे ज्ञानी योगी बन करके रहते हैं, लेकिन अचानक कोई पेपर आता है और उसमें फेल हो जाते हैं, तो की कमाई चट हो जाती है। ये बाबा के शब्द हैं। इतने समय की हुई कमाई कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है, और उसका कारण ये है कि हमने अपने आप पर शासन करना नहीं सीखा। अगर हम स्वशासक बन जाएं, राजा बने अपने, दूसरों के नहीं, पर शासक बनना तो बहुत सहज है, लेकिन स्वशासक बन करके रहें, आत्मा मालिक है, जो चाहे वो देखे, जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो सुने, जो चाहे वही सोचे, इतना अपने आप पर अगर नियंत्रण है, अभ्यास किया है, जिसके लिए साकार बाबा की मुरलियों में आता है, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान कई प्रकार की अवज्ञाएं कराता है। जितने भी पेपर आते हैं, अगर कोई फेल हो रहे हैं, उसका कारण है उन्होंने अपने देह अभिमान को गलाया नहीं है। पांडव पहाड़ों पर गल गए, लेकिन ये पांडव पहाड़ों पर गलते नहीं। ये वो गलने की बात नहीं है कि कोई पहाड़ पर गया और शरीर से गल गया, वो तो हिंसा हो जाएगी। जानबूझ करके कोई अगर ऐसे करे तो ऐसा पांडव कैसे कर सकते हैं। लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, ये मेरे पांडव बच्चे, आत्मा रूपी पांडव बच्चे ऐसी ऊंची स्टेज में रहते हैं जो देह भान गल जाए, देह अभिमान समाप्त हो जाए। अब इसी की तपस्या है, यही एक मेहनत की सब्जेक्ट है। अगर कोई ने शुरू से बाबा का बच्चा बनने के तुरंत बाद ही अभ्यास करना शुरू कर दिया, सेवाएं एक स्थान पर हैं, सेवाएं कराने वाला बाबा करा रहा है, लेकिन सेवाएं हमारी स्थिति को बिगाड़ न दें। सेवाओं में कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने लग जाते हैं, जो स्वयं के लिए समय नहीं देते। दीदी जी की एक बात शिक्षा की याद करना, जिन्होंने दीदी की पालना ली है वो जानते हैं, दीदी एक बात बहुत प्यार से कहती थी, अगर किसी को अपने आप को बदलना है, सुधरना है, तो अपना शिक्षक खुद बनो, अपने आप को खुद पढ़ाओ। हर एक को पता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन से संस्कार हैं। भले बाहर से हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लोगों की भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर मैं जो हूं, मैं खुद को खुद ही जान सकता हूं। इसलिए हर एक अपने आप को जानता है, और वो जानता है कि अगर ये पेपर मेरे सामने आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसलिए ऐसी बातें जो कमियों की, कमजोरियों की, संस्कारों की हैं, बहुत सूक्ष्म रीति से अपनी चेकिंग की जरूरत है। चेक करो, और चेक करके कहीं निराश उदास नहीं हो जाना। कई बार ऐसे होता, चेक कर लेते हैं ना, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे तो ये संस्कार हैं, मेरे ये संस्कार हैं। चलते चलते आत्मा क्या होती है, दिल शिकस्त, निराश, उदास, उमंग उत्साही खत्म हो जाता है। भाई मेरे अंदर ऐसे संस्कार, शायद मैं देवता बनूंगा ही नहीं, तो कहां बाबा पढ़ा करके हमें क्या से क्या बनाना चाहता है। और पढ़ने वाला अगर छोटी छोटी बातों में बहुत दिल शिकस्त हो, कमजोर अपने को महसूस करे, तो पढ़ाने वाला क्या करेगा, वो तो उमंग उत्साह दिलाता है, पुरुषार्थ कराता है। हम सूक्ष्म अपनी चेकिंग करें, और जो लगता है ये मेरे संस्कार गलत हैं, ब्राह्मण जीवन के विपरीत हैं, यही मेरे मार्ग में विघ्न रूप हैं, चेक करो और चेंज करो। सबसे बड़ी शक्ति है महसूसता की शक्ति। महसूस हो कि ये कमी, ये कमजोरी हमें योग में रहने नहीं देती है, हमें खुशी में रहने नहीं देती है, हमें एक रस स्थिति में रहने नहीं देती है। चेक करो और उसको अंदर अंदर दृढ़ता से महसूस करके चार बातें हैं। पहली समझ, परिवर्तन के लिए पहले समझ चाहिए, और समझ हमें बाबा की मुरलियों से रोज मिलती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये समझ न हो कि कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है। बाबा सब कुछ मुरली के अंदर, साकार बाबा की मुरलियों में हर बात स्पष्ट की हुई है कि बच्चे इस पर विजय पाना, इस पर विजय पाना, यहां तक भी बाबा ने डिक्लियर कर दिया। अंतिम पेपर और अंतिम पेपर का टाइम, कौन सा पेपर है अंतिम? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक की याद रहे, अंत मति सो गति, कोई भी देहधारी की याद ना आए, कोई कितना भी अच्छा हो, कहीं भी बुद्धि अंत समय में न जाए। बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होता है तो पेपर आता है, बुद्धि भटक जाती है, और अंत जैसी अंतिम समय की स्मृति है वैसा अगला जन्म मिलता है जाकर। इसलिए बाबा हमारा बहुत समय से ध्यान खिंचाते हैं, बच्चे अचानक के पहले एवर रेडी रहो, और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो जिन्होंने बहुत काल से इस शरीर से न्यारा रहने का अभ्यास किया है, देह से डिटैच रहने का अभ्यास किया है, मैं अलग हूं ये अलग है, आप योग में और कोई भले चिंतन नहीं करना, लेकिन एक ये अभ्यास जरूर करना, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। यथार्थ योग जिसमें देह और देही दोनों अलग अलग अनुभव होने लगे। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे बहुत एक दूसरे से साथ चिपक चुके हैं, अलग नहीं होते हैं। इसलिए बार बार अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये संकल्प शक्ति मेरी अपनी शक्ति है, मन मेरा है, इस मन को जिधर ले जाना चाहूं इधर चले, ऐसे नहीं भटक रहा है, कंट्रोल के बाहर है। हर एक के पास है ना लगाम घोड़े की कि नहीं, घोड़ा भागता है इधर से उधर, चेक करते हो घोड़े को? चेक करते हो मन घोड़ा है ना, कहाँ कहाँ जाता है, किधर जाता है? श्रीमत की लगाम ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना, ये नहीं बोलना, ये बाबा ने बाउंड्री बनाई है, इसके बाहर नहीं जाना। तो अगर हम सब अपने आप की चेकिंग करते हैं और विशेष सूक्ष्म शक्ति पर ध्यान देते हैं कि ये मन किधर किधर भटकता है, कितना मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं एक सेकेंड में संकल्प करूं चल तू मुझे वतन में ले चल, अव्यक्त वतन, मूल वतन, सैर करा, कहाँ बाबा रहता है, क्या करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, पता नहीं आप लोग भी विचार करते होंगे, आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो करके 54 साल, 53-54 साल पूरा हो गया, वतन में बैठा है, क्या करता होगा, और शिव बाबा के साथ कैसे वो कंबाइंड होकर के सेवा कर रहा है। एक पल भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग नहीं होते, इतना जुड़वा हो गए दोनों। कितनी सेवाएं कर रहे हैं, देश विदेश में जहां जाओ बाबा का खेल चल रहा है, अव्यक्त रूप में सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। आत्माएं थोड़ा निमित्त बनती हैं तो उनको ये आ जाता, मैंने किया, मैं करता हूं, लेकिन कराने वाला करा रहा है, उसका बहुत सूक्ष्म खेल चल रहा है। तो क्या कभी कभी हम उसको इमर्ज करते हैं, अपने संकल्प को वहां ले जाएं, बाबा से बोलें, बाबा आप क्या कर रहे हो यहां बैठ करके इतने समय से, कैसे नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हो, कैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, कैसे इन साइंसदान को प्रेरित कर रहे हो, कैसे अपनी इस प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हो, इतना बड़ा कार्य बाबा का वतन से चल रहा है। विचार करते हो कभी? अगर इस पर विचार करो तो व्यर्थ संकल्प आएंगे नहीं, इधर उधर जाएगा ही नहीं। और जब चाहोगे अव्यक्त वतन, मूल वतन, साकार वतन में मधुबन, मन उसी गति की ओर चले, दूसरी तरफ न भटके, इस पर ध्यान देना, तब अंत समय में एक की याद रहेगी। अगर बहुत काल से मन को भटकने से छुड़ाया नहीं है तो पास भी था, अंदर क्या पास भी होना मुश्किल है। पेपर बहुत हार्ड है, पढ़ाने वाला कहता है सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास कितने होते हैं? पास विद आनर तो केवल 8 ही होते हैं। विजयी माला बनती है विजयी रत्नों की, फिर 108, फिर 16,108। तो हम बाबा के बच्चे रेस तो करें, दिल से कष्ट न हो जाए। बाबा कहता मार्जिन है सबके लिए, सीट बुक नहीं हुई है, ये चेयर रेस चल रही है, आप रेस करके देखो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं सुनाई है, केवल सब बातों से उपराम हो करके करो सब कुछ, लेकिन फंसो कहीं नहीं। करने की छुट्टी दी है, खेल खेलना है कर्म क्षेत्र पर, कर्म करना है लेकिन कर्म इंद्रिय जीत बन करके करना, कर्म योगी बन करके करना, कर्म आत्मा को अपनी तरफ खींच न ले, कर्म अधीन न बना दे, उस स्थिति में रह करके कर्म किया और न्यारे हो गए। करावन हार बाबा तूने करा लिया, शुक्रिया बाबा, कर्म बंधन न बने। नहीं तो कई बार सेवाओं का बंधन भी अंत समय में अपनी तरफ खींच लेगा। कई बार कोई को सेवाएं नहीं मिलती हैं, बेचारा बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। और बाबा कहता है सेवाओं का भी बंधन नहीं चाहिए, आ रही है सेवाएं करो, भाग्य है, लेकिन बहुत न्यारी स्थिति में रह करके करो। अगर पास विद तानर का सर्टिफिकेट लेना है, पेपर में पास होना है, तो उसके लिए बहुत काल से बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति, कोई को दिखावा नहीं करना। मुझे वो दिन याद आते हैं 83 के, जब दीदी को मैंने देखा कर्मातीत बनने के पहले। उस साल ओम शांति भवन बन करके तैयार हुआ था, फरवरी में उद्घाटन हुआ है, और फरवरी से लेकर के जुलाई तक केवल 4-5 महीने में दीदी की उपराम स्थिति, बस अब घर चलना है, अब घर चलना है, कोई भी बात लेकर के जाओ, काम सब हो रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ रोका है, जवाब देती थी, लेकिन कहती छोड़ो इन बातों को, चलना है अभी तो वापस चलना है। वो प्राम स्थिति जिसके अंदर कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे। बाबा भी उसके आगे मुरली क्या चला रहे हैं, अव्यक्त बाबा के सामने जब दीदी बैठती थी, बच्ची तुम पलंग पर थोड़ी हो, थोड़ी सभी तबीयत नीचे ऊपर थी, तुम तो प्लानिंग पर हो, प्लानिंग कर रही हो, नई दुनिया की प्लानिंग चल रही है, तुम पलंग पर नहीं हो, तुम विमान नहीं हो। ऐसी उपराम और वैराग्य की वृत्ति से उन्होंने अंतिम पेपर को पास कर लिया। शरीर का ही पेपर आता अंत का, मोस्टली तो यही होता है, किसी के आगे शरीर का पेपर आता है, किसी के आगे संबंधों के पेपर आते हैं, किसी के आगे आर्थिक रूप में धन के पेपर आते हैं, किसी के आगे अपने संस्कारों के पेपर आते हैं, स्वभाव के पेपर आते हैं। और उस पेपर्स में पास हो जाएं, कोई भी पेपर आया, हमने देखा दादियों ने अंत समय में शरीर के पेपर को बहुत सहज रीति से पार किया, शांत हो गई, एकांत में चली गई, लेकिन एकदम न्यारी प्यारी उपराम। इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी जवाबदारियां हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई चीज ने उनको अपनी तरफ खींचाने कराने वाला करा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है, खुद को अपने को उपराम कर लिया, न्यारा कर लिया। और कभी कोई नहीं अगर कहा दादी आपकी तबीयत कैसे, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाबा बैठा है, आप सबकी बड़ों की बाबा की दुआएं हैं, वो दुआएं उस अंतिम पेपर में उन्हें पास करा दिया। बहुत काल से सर ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेने का ध्यान रखा, श्रीमत पर चल करके बाबा की दुआएं लेने का ध्यान रखा, और उन दुआओं ने उस पेपर में पास में तानर बना दिया। हम सभी भी बाबा के बच्चे ये तो अटेंशन रख सकते हैं कि कम से कम इस अंतिम जन्म में, अंतिम समय में कोई भी आत्मा भूल चूक से भी मुझे बद्दुआ न दे, इतना अटेंशन रख सकते हैं ना। अगर बद्दुआएं दे रहा है कोई, मेरे कारण से डिस्टर्ब है, नाराज हो रहा है, अपसेट हो रहा है, तो हो सकता है वो अंत समय में खींच ले जाए अपनी तरफ। दो ही चीजें खींचती हैं, एक जो बहुत अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति अच्छा लगता है, चाहे सेवाएं अच्छी लगती हैं, चाहे कोई खान पीन अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी, बाबा कहता है जो अच्छा लग रहा है वही एक आकर्षण का केंद्र है जो अंत समय में आपको उधर खींच करके ले जाएगा, पास होने नहीं देगा, पेपर आएगा और उधर बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए जो अच्छा लगता है, विशेष अच्छा लगता है, उस पर ध्यान देना, अगर नहीं है तो वो अच्छाई मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। इसलिए उस आकर्षण में हमें आकर्षित नहीं होना है, कुछ भी हो जाए उस आकर्षण से उपराम करो अपने आप को, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अभी मैं विदेश टूर पर था ना, मुझे कोई ने, बहनों ने ऐसे पूछा, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है। कहते नहीं, कोई स्पेशल चीज हो तो बताओ, हम बनवाएं। फिर वो बताने लगी कि एक बार मोहिनी बहन जी न्यूयॉर्क में जो मुख्य हैं, उनसे पूछा, दीदी आपको क्या अच्छा लगता है विशेष, तो उन्होंने कोई बात बोल दी कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है भोजन में। कहती वो जितने सेंटर्स पर गई सब ने वही चीज बना के उनके आगे रख दिया। कहती यही खा खा करके तो मैं बोर हो गई, जहां जाओ वही चीज। तो अगर मान लो मैं बोल दूं मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तो जिस सेंटर पर जाऊंगा तो वही बना हुआ रखा होगा, कितना खाएंगे, कितनी बार खाएंगे। तो इसलिए अच्छा लगता है माना आपको वही खिंचाव होगा और वो तंग करेगा, बोर कर देगा। बहुत ध्यान देने की बात है, सब अच्छा है जो मिलता है, प्यार से बाबा की याद में क्या है, खा लिया रहे, जैसा स्थान मिला, जहां भी मिला। अब मुझे वहां के बिस्तर ही अच्छे नहीं लगते थे, इतने मोटे मोटे, वो जाली वाले गद्दे, बैठो अंदर चले जाओ। मैं क्या भाई, हमको नींद नहीं आती इस पर, मुझे जमीन में बिछा दो, क्या अच्छा है। तो बाबा अपने बच्चों को हर परिस्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, जो कैसा भी पेपर अंत समय में आएगा, साधन नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, एसी नहीं होगा, पंखे नहीं होंगे, मान लो आज इंटरनेट फेल हो जाए, कितने लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहां चली जाएगी इकोनॉमी देश की, क्या होगा, विचार करके देखो। अब ऐसे समय में क्या ये पेपर आएगा हम पास हो जाएंगे, चेक करना चाहिए। आधार तो हमने नहीं बनाया है, कोई साधनों को जिसने आधार बना दिया वो हमेशा फेल हो जाएगा, कोई भी पेपर आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे साधना पहले है, साधन है, यूज करो, आपके लिए है, प्रकृति आपके लिए है, लेकिन उसके अधीन होकर के यूज नहीं करना है। यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, सन्यासी नहीं हमने छोड़ दिया है, लेकिन उनके परवश नहीं है, अधीन नहीं है, मालिक बन करके यूज करें, है यूज करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसलिए प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए कोई भी बात। साधनों के आधार से अभी बहुत परिवर्तन हुआ है, साइंस के साधनों ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया। आज देखो कहीं भी किसी स्थान पर टाइपराइटर देखने को नहीं मिलती, और एक दिन था तो ज्यादा मुरलियां क्या सब कुछ टाइप पर ही था, बदल गया, युग बदल गया। जैसे साइंस ने युग परिवर्तन कर दिया, आज कैमरे किसी के हाथ में नहीं, सबके हाथ में कैमरे मोबाइल में आ गए, जिधर जाओ उधर फोटो निकाल रहे हैं लोग खड़े। और पहले फोटो निकालना होता था तो कैमरे वाले को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो साधन बहुत फास्ट गति से साइंस ने दिए हैं, लेकिन एक सेकंड में अगर समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए आज बैठे बैठे, तो क्या हालत हमारी होगी? स्थिति डगमग तो नहीं होगी? पास होंगे या फेल हो जाएंगे? प्रश्न तो पूछना चाहिए ना, कि मान लो ये साधन चले जाए तो क्या मेरी मन की स्थिति होगी? आज दो दिन अगर मोबाइल नहीं चलता, इंटरटेन नहीं चलता है, मन के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अब क्या होगा, ये क्या होगा, कोई समाचार नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है। बाबा कहता है बच्चे वैराग्य वृत्ति, वैराग्य अंदर से वैराग्य आएगा तब अंतिम समय के अंतिम पेपर में हम पास हो सके, पास भी दानर बन जाएंगे। इसलिए सब साधन सुविधाएं वैभव पदार्थ जो साइंस ने दिए हैं यूज करो, प्रयोग करो, लेकिन आधारित नहीं होना, नहीं तो कहीं ना कहीं फेल कर देंगे। मैं आज सोच रहा था पाशवी तानर बनने के लिए तीन चीजें पेपर रूप में आ रही हैं। एक कर्म इंद्रियों की आकर्षण, कर्म इंद्रियां अधीन बना करके आत्मा को चला रही हैं। अभी तक भी इतने समय से योग अभ्यास करते हुए भी कोई को आंख धोखा देती है, कोई को मुख धोखा दे रहा है, कोई को कान धोखा दे रहे हैं, कोई को अपना मन ही धोखा दे रहा है, कोई ना कोई कर्म इंद्रियों के अधीन है। अधिकारी स्थिति कहां तक बनी है? इतना कंट्रोलिंग पावर है, जब चाहे हम अपने संकल्पों को उस तरह से मोड़ दें, मोड़ने की शक्ति। दो ही शक्तियां चाहिए ऊंची मंजिल के राही के पास, दो शक्तियां जरूरी हैं, एक ब्रेक पावरफुल चाहिए और दूसरे मोल्डिंग पावर चाहिए। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ब्रेक इसलिए नहीं होती कि हमेशा लगा करके रखो, पैर उसके ऊपर नहीं रखा जाता है, नहीं तो फास्ट स्पीड नहीं होगी। ब्रेक से गाड़ी को खड़ा नहीं किया जाता है, लेकिन जहां पर लगता है कि अभी कुछ हो सकता है, टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर ब्रेक यूज करते हैं। और ड्रामा की ब्रेक बाबा ने इतनी अच्छी दी है बच्चे, नथिंग न्यू, सब कुछ ड्रामा के अंदर एक्यूरेट चल रहा है। क्यों प्रश्नों में उलझ रहे हो? जो आत्माएं संगम पर प्रश्नों में उलझती हैं वो कभी भी पास विधानन नहीं बन सकती। कैसी भी सीन है, अच्छी है, बुरी है, ब्राह्मण परिवार में भी कोई ऐसी वैसी सीन दिखाई देती है, बाबा कहता बच्चे तुमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों प्रश्नों में उलझते हो? उलझ गए तो उलझन में सूत उलझ जाए, फिर उसको ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग वालों ने सब सूत को उलझा दिया है, न आत्मा का पता, न परमात्मा का पता, न घर का पता, जिससे जो पूछो सब वही है, वही है, वही है। मूंझ गया सूत, ऐसा मूझा हुआ है, उसको सुलझाना सहज नहीं है। भगवान कितने समय से मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत लग रही बाबा को। अरे बच्चे तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा नहीं हो, परमात्मा ब्रह्म नहीं है, तुम्हारा घर है ब्रह्म, परमात्मा तो तुम्हारा पिता है। कितनी बाबा को मेहनत करनी पड़ी सूत को सुलझाने में, उलझे हुए सूत। अभी बाबा कहता है बच्चे ब्राह्मण बनने के बाद कभी भी कोई की स्थिति को नीचे ऊपर देख करके आप अपने इस बुद्धि रूपी सूत को उलझा नहीं देना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। कई बाबा के बच्चे चलते चलते उलझ जाते हैं, ब्राह्मण परिवार में हमने तो सोचा ही नहीं था, ऐसा भी होता, ऐसा भी होता। बाबा कहते सब कुछ होगा, हिसाब किताब हरेक के हैं, हरेक के कर्मों की गति है, और किसी के साथ आगे कोई भी पेपर कैसे भी आ सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे केवल एक ही पाठ पक्का करो, अगर पास विथानर होना है तो सी फादर फॉलो फादर, सीधे को देखना है, इधर उधर देखा फेल हो जाओगे। कोई कुछ भी हो, कितना भी महारथी हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भी हिसाब किताब उसके सामने आ सकता है, और उसको देख लिया तो चलते चलते डिस्टर्ब हो जाओगे। ये भी ऐसे करता, मैंने तो सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा ज्ञानी, इतना अच्छा योगी, इतनी ऊंची ऊंची बातें करने वाला, ये भी फेल हो गया, ये भी ऐसे क्या कर रहा है, इसके संस्कार भी ऐसे हैं। बाबा तुमको किसने कहा ये सब देखो, ये साइट सीन्स है, तुमको देखने की मना है। अगर पास में तानर कोई को होना है तो यही ध्यान देना, मुझे केवल सीधा रास्ता पकड़ना है, गलियों में भटकना नहीं है, किसी भी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देना। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अपने पद के अनुसार, अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार उनका पुरुषार्थ चल रहा है, रेस चल रही है, कोई संपन्न संपूर्ण नहीं बने हैं। इसलिए देखना है तो केवल ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, जिन्होंने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया। किसी को भी नहीं देखा, कोई बातें नहीं देखी, उन्होंने कैसे लक्ष्य को प्राप्त किया। हम सभी भी पुरुषार्थ के इस मार्ग के अंदर जब पास विद आनर बनने की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान देना कि कहीं किसी साइट सीन पर बुद्धि नहीं जाती, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। कईयों को बहुत समाचार सुनने के इंटरेस्ट रहते हैं और वो भी व्यर्थ के समाचार, तेरे मेरे के समाचार। बाबा के तहत तुम्हारा क्या जाता है, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी शक्तियों को बचाओ, लक्ष्य रखो, मुझे पास होना है, दूसरा हो या ना हो, मुझे बाबा से सर्टिफिकेट लेना है। अगर किसी के सामने लक्ष्य पक्का है तो बाबा कहता है रेस करो, और रेस के घोड़े के दोनों तरफ आंख की पट्टी लगा दे, इधर भी न देखे, इधर भी न देखे, तभी तो भाग सकता है, तभी तो मंजिल पर पहुंचाएगा। और अगर वो पट्टी खोल दी और इधर उधर देख लिया तो घोड़ा भटक जाएगा, फिर कहीं भी गिराएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चों को एक ही ध्यान रखना है, केवल बाबा को देखना है। बाबा ने कैसे अपने पुरुषार्थ को किया, मुझे बहुत, आप सब देखते होंगे बाबा की मुरलियों में, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ साकार में किया, साकार में वर्णन कहीं नहीं किया। अरे बच्चे मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं भी युद्ध करता हूँ, पहले मेरे पास आता है, मुझे ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। बच्चों को बहुत आथत दिया अपने पुरुषार्थ के बारे में, कभी साकार बाबा ने वर्णन नहीं किया है। लेकिन अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा साक्षी होकर ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ सुनाता है, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया। जब मैं कभी उसको निकालते हूँ पॉइंट्स, ब्रह्मा बाबा के कदम क्या थे, हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ की बात सुनाता। कितना गुप्त रीति से बाबा ने पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाया, और साकार में वर्णन नहीं किया, लेकिन जब अव्यक्त हो गए, संपन्न बने, शिव बाबा के साथी बने, तब शिव बाबा ने उनके पुरुषार्थ की कई बातें बहुत स्पष्ट सुनाई है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे गुप्त रीति से पुरुषार्थ किया। केवल तीन बातों के पुरुषार्थ से उन्होंने पास में तानर का सर्टिफिकेट लिया। एक तरफ वो निराकारी स्थिति का बहुत गहरा अभ्यास, दूसरी तरफ निर्विकारी स्थिति, बिल्कुल संपूर्ण पावन स्थिति, और तीसरी तरफ कहीं इसका भी अहंकार ना जाए, वो निरहंकारी बने। और इसी पुरुषार्थ से वो सबसे न्यारे, सबके प्यारे बने और संपन्नता को प्राप्त कर लिए, पास वितानर बन गए। हम सभी भी इसी लक्ष्य को सामने रखते हैं। सबसे पहला अटेंशन देते हैं कि हम अपनी संपूर्ण कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करें, और उसके लिए जितना समय हो सकता है अशरीरी रहने का अभ्यास। मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं। कितनी बार ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में पुरुषार्थ करके मुरलियों में वर्णन किया, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, आत्मा समझ करके बाप को याद करो। बहुत मेहनत किया है देह भान को गलाने की, एकदम एकांत में चले जाते। बाबा का अंतिम समय का जो पुरुषार्थ है, छोटे हाल में एक घड़ी लगी हुई थी, वो घड़ी में एक चिड़िया थी, वो जब बाहर आती घंटा बजाते थे, छू 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 करती थी। बाबा योग कराने बैठता था, बच्चा बच्ची इस बच्ची को बंद कर दो, शांत कर दो, ये बच्ची बोलती है बहुत, घड़ी को बच्चे कहता था, मतलब वो घड़ी भी हटवा दिया बाबा ने। बच्चे क्यों आवाज में आना, बिल्कुल आवाज से परे की स्टेज में ब्रह्मा बाबा चले गए, आवाज अच्छी नहीं लगती थी। आज अगर देखो तो कितना अभी तक ब्राह्मणों को आवाज का रस कितना है, बोलना ये बातें वो बातें, मिलेंगे तो पता नहीं कहाँ की बातें निकलती रहती है, खाने पर बैठेंगे वो भी बढ़ता है। ठीक है अभी भट्टी में तो नहीं कर रहे होंगे आप लोग, अटेंशन रखा होगा, लेकिन ऐसे जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ, क्लास के समय तो बड़े अच्छे बैठते हैं, अगर टोली बांटना शुरू करो तो पता नहीं क्या मिलेगी नहीं, एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाते आकर। वो रॉयल्टी कहाँ है, वो मैनर्स कहाँ है, किसमें पास मिथा नरम होना चाहते हैं। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फरिश्ता को देवता बनना है, इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, और उस लक्ष्य की प्रैक्टिकल कुछ तो सबूत लक्षण हमारे जीवन में दिखाई दे, पास मिथानर हो जाएंगे ऐसे। इसलिए अगर लक्ष्य रखा है कि पहले मैं सच्चा पक्का ब्राह्मण बन जाऊं, तो ब्राह्मण वो है जो कर्म इंद्रिय जीत है, अगर कर्म इंद्रियों के अधीन है तो पक्का ब्राह्मण ही नहीं है वो। तो पहला पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर लूं, शीतल काया वाला योगी बन जाऊं। योगी वो है जो शीतल काया वाला है, जिसके अंग अंग सुगंधित हैं, न कभी उत्तेजित होता है, न आवेश आता है, न आवेग आता है, बहुत चेक करने की जरूरत है, बहुत जल्दी दोनों चीजें आ जाती है। कोई भी बात आएगा तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत अंदर अंदर, भले बाहर से कुछ न रूप हो, अंदर अंदर चिड़चिड़ापन एकदम लगेगा, क्या है कैसे हो रहा है सब, कितनी शक्तियां आवेश में खत्म हो जाती हैं। और अगर आवेग आ गया अंदर से, कोई विकारों का वेग तीव्रता से आ गया, कुछ नहीं दिखाई देता, ज्ञान ध्यान सब एक तरफ रह जाता, फट से कोई न कोई विकर्म आत्मा कर लेती। अगर पास बिठाना रोना है तो सब ध्यान देना, मैं शीतल काया वाला योगी बन जाऊं, एक एक कर्म इंद्रिय को शीतल बना दो। इतना प्यार से बाबा को याद करो, जो बाबा की पवित्रता की किरणें यहां आए और वो हमारी इंद्रियों को शीतल बना दे, सफेद किरणों को सवेरे सवेरे ऐसे अनुभव करो, जैसे परम धाम से परम पवित्र शिव बाबा की किरणें इस मस्तक पर आ रही हैं और वो चारों तरफ मेरे शरीर पर फैल करके इस शरीर के अंग अंग को शीतल कर रही हैं, सब उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। पहला पुरुषार्थ, अगर पास में थानर बनना है तो ये करना पड़ेगा। है थोड़ा टेंशन की बात, क्योंकि बहुत समय से हम कर्म इंद्रियों के अधीन रहे हैं, कोई को खाना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो कुछ अच्छा लगता है उस अच्छाई को ध्यान दो, वो कहीं खींच करके अपनी तरफ न ले जाए। तो एक तरफ किसी की अच्छाई पर प्रभावित हो जाना और दूसरी तरफ किसी के भी कमी कमजोरियों पर नफरत करना, घृणा करना, वो भी व्यक्ति सामने आ जाएगा अंत समय में। इसलिए सब अच्छे हैं, सब ठीक है, ये गलत है, ये खराब व्यक्ति है, ठीक नहीं है, वो भी भावनाएं अगर हमने अंदर अंदर बना ली तो अंतिम पेपर में हो सकता है वो सामने आ जाए हिसाब किताब चुक तो करने के लिए। इसलिए सब अच्छे हैं, क्या कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, सब अच्छे हैं, सब बाबा के हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अगर ये भावनाएं बनी रहती हैं तो कोई व्यक्तिगत व्यक्ति, कोई व्यक्ति चीज, कोई वस्तु अपनी तरफ खींचती नहीं है, आकर्षण नहीं करती है। तो ये चेकिंग करना कि कहीं भी कोई आकर्षण मुझ आत्मा को अंतिम पेपर में खींच तो नहीं लेगी, खाने की पीने की घूमने की बोलने की देखने की सेवा करने की, बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमने बना ली है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग, कर्म इंद्रिय जीत बन जाओ, कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। दूसरा पेपर आ रहा है प्रकृति का, प्रकृति में भी हम तीन बातें हमेशा कहते हैं, प्रकृति पति तो हमारा बाबा है। ये प्रकृति, भाई प्रकृति भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ये बाह्य प्रकृति भी कई बार आत्माओं को बहुत परेशान करती है। कम से कम इसकी इतनी तो सेवा करो, जो मुझ आत्मा को ये प्रकृति सेवा के लिए है, परेशान कर क्यों करे। आधा घंटा रोज इसको शांति का दान दो, बहुत प्यार से, भाई तूने बहुत सुख दिया है सबको, तुम बहुत अच्छी है। ये बाह्य प्रकृति के तत्व आत्मा को कभी डिस्टर्ब न कर दें। बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई साधन नहीं है, मैं बेचैन हो गया, उसमें भी शीतलता का अनुभव, कोई बात नहीं। इतनी अंदर की स्थिति ऐसी हो जो कोई भी बात का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। प्रकृति जीत बनने के लिए प्रकृति के द्वारा आने वाला पेपर एक बाह्य प्रकृति का पेपर है और दूसरा इस शरीर की प्रकृति का पेपर है। ये भी प्रकृति है, पांच तत्व की बनी हुई। इसमें भी अगर एक तत्व का भी बैलेंस खत्म हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो इस शरीर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है। कहते इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसकी जठाग्नि खत्म हो गई है, इसका पाचन शक्ति बेकार हो गई है। हर तत्व बैलेंस में चाहिए, उस पर हमारा बहुत ध्यान हो। क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ रहना है, क्या प्रकृति की सेवा करनी है। जो ये प्रकृति, शरीर की प्रकृति भी समय पर हमें साथ दे, बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर शरीर रूपी प्रकृति साथ नहीं देती, आत्मा कितनी भी शक्तिशाली हो, कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना है, ध्यान रखना है, इसकी संभाल जरूरी है। इसको समय पर भोजन मिले, समय पर एक्सरसाइज मिले, समय पर नींद मिले। अति हमेशा नुकसान करती है। अगर अति में कोई में चले गए, नींद नहीं कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, शरीर कब तक साथ देगा। एक्सरसाइज भी चाहिए उसको, व्यायाम भी चाहिए। तो अगर कोई ने ब्राह्मण जीवन में सचमुच सुखद जीवन का अनुभव करना है, तो शरीर रूपी प्रकृति पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फंसो नहीं, लेकिन इसकी संभाल जरूरी है। अगर 5-6 घंटा इसको नींद चाहिए तो नींद देना है। ऐसे नहीं हम नींद नहीं करेंगे, बाबा ने कहा निंद्रा जीत बन जाओ, ऐसा कहा है निंद्रा जीत बन जाओ। निंद्रा जीत का अर्थ क्या है? समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। 11-12 बजे तक जग करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बैलेंस करो, ठीक करो। दादी जी कहती थी 10 तो बस, 10 के बाद कोई कारोबार नहीं करने, कुछ भी हो जाए। 10 बजे सो जाओ, 3 बजे 3:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। बैलेंस से चलो। तो सबको ये ध्यान देना है कि हम सब प्रकृति जीत बने। ये देह की प्रकृति, बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करें। और तीसरी है नेचर, प्रकृति, आदतें जो बनी हुई है, जिस संग में रहे हैं, जो खाया है, जो पढ़ा है, जो जिस परिवार में पला है, उसी प्रकार की उसकी नेचर डेवलप हुई है। कोई गरीबी में पला है तो गरीबी की नेचर है, कोई बहुत साहूकारी में पला है तो साहूकारी की नेचर है, कोई ऐसे साथियों के बीच में रहा है स्टडी की, उसकी नेचर वैसी बनी है। लेकिन वो नेचर एक ब्राह्मण नेचर बन जाए और वो नेचर नेचुरल आए प्रैक्टिकल में, वो प्रकृति पर जीत चाहिए। इस पर ध्यान देना आप सब। कई बार हम बाह्य प्रकृति पर जीत प्राप्त कर लेते, इस प्रकृति पर भी बहुत ध्यान देते, लेकिन जो संस्कार रूपी आदतों की नेचर बनी है, उस नेचर के अधीन हो जाते हैं। क्या करूं, मेरी नेचर है, मैं चाहता थोड़ी हूं, मेरी नेचर है। बोल दिया, कट कर दिया, किसी बात को बोल दिया, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब कर दिया, मूड खराब कर दिया, खुशी गायब, मेरी नेचर है, मैं चाहता नहीं हूं। इस पर ध्यान देते हो कभी? उस नेचर का परिवर्तन चाहिए और उसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं तो कहीं भी ये पेपर फेल कर देगा। तो एक कर्मेंद्रिय जीत बनना, दूसरा प्रकृति जीत बनना और तीसरा विक्रमा जीत बनना है। अभी वर्तमान समय में हम सब बाबा के बच्चों से कोई भी ऐसा कर्म विकर्म के रूप में ना हो जाए जिसका पश्चाताप करना पड़े। तो चलते चलते माया कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अवज्ञाएं करा देती है और वो अवज्ञाएं ही विकर्म है। व्यर्थ सोचना भी विकर्म हो गया, व्यर्थ बोलना भी विकर्म हो गया। अगर पास भी तानर बनना है तो कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और फिर विक्रमा जीत। वो स्थिति अगर वर्तमान समय हम सब ने बनाई है, ध्यान दिया है, तो अंतिम पेपर में सहज पास हो सकेंगे। तो चेक करना सब किनारे छूटे हैं, कोई किनारा पकड़ के तो नहीं रखा है। देह का है, संबंधों का है, साधनों का है, संस्कारों का है, बहुत सारे किनारे कहीं ने पकड़े हुए हैं, मेरा मेरा मेरा, और वही कहीं ना फेरा बन जाए, ध्यान देना, वही चक्कर में ले आएगा। जहां पर मेरापन आया वहां पर मैलापन आ जाएगा, फेल कर देगा। इसलिए सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा समर्पित करो बाबा के आगे। जो कुछ आए मेरा है, अरे मेरा कहाँ है, सब बाबा का है। तन मन धन संबंध जो भी है सब बाबा तेरा है। इतने लाइट हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ, अगर अंतिम पेपर में पास बिताना रोना है तो कहीं पर भी मैं और मेरेपन का लगाव नहीं चाहिए। जहां मैं आए, मैं आत्मा हूं, मैंने किया, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, बाबा तेरी कहां से आई, मैं क्यों कर रहा है, तो बकरे की बलि ले आ जाता है, मैं की बलि चढ़ा दो। और जहां मेरा पना है बाबा, क्या कि बाबा है, सब तेरा है, सब तेरा, तू कराने वाला बैठा है। अभी तो हर ब्राह्मण आत्मा को सोचने का काम भी बाबा को दे देना चाहिए, वो फ्री बैठा है, हम क्यों सोचें। इतना बाबा के आगे समर्पित हो जाओ, बाबा तो जैसे मेरे को यूज करना चाहिए यूज कर दे, मैं तेरा हूं, तू मुझे यूज कर ले। इतना समर्पित भाव से अगर बाबा के आगे हम बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, बाबा बड़े अच्छे अच्छे काम कराता, अपने आप कराता है सब कुछ, और ऐसे लगता है वो कराने वाला करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। कई अनुभव ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कहां कर रहा हूं, कराने वाला बाबा करा रहा है। तो इतना निमित्त भाव, निर्माण भाव, नम्रचित भाव आ जाए, जरा भी कहीं भी मैंपन ना आए, मेरापन ना आए, तो अंतिम पेपर में हम सब पास विद ऑनर हो सकेंगे। चेक करो, चेंज करो। मैं सोचता चार बातें बताई थी, समझ, मैं सोचता, दृढ़ता से संपन्न तपस्या, और उस तपस्या के पीछे कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, चारों बातों पर अगर किसी का ध्यान है तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और अंतिम पेपर में वो पास हो जाएगा। पहले समझ, खूब मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, बुद्धि समझदार बन जाए, राइट रॉन्ग क्या है उसको समझ सके, और समझ करके अगर मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है, मेरे कोई ऐसे आदत संस्कार है, उसको महसूस करके, और उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, तपस्या करो, हट से भी उसको जीतना है मुझे, ये मेरा संस्कार मुझे समाप्त करना है, ऐसी तपस्या करके, सहन करके, सामना करके, समा करके मुझे पास विथानर बनना है। ठीक है, तो पास विथानर बनेंगे ना सभी, है लक्ष्य, है माताएं बनेंगी। लक्ष्य रखना, बाबा के घर में आए हो ऐसा लक्ष्य रखना कि मैं नंबर वन पास विथ ऑनर बनूं। चलो अभी हम सब बाबा के पास चलते हैं, पांच मिनट के लिए सब इस देह से डिटैच हो जाओ, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूं। बाबा के साथ एकदम डीप चले जाओ,
सिंह